കൃഷ്ണവർണം ത്വിസാ കൃഷ്ണം, കൃഷ്ണവർണം ത്വിസാ കൃഷ്ണം, സാംഗോപാംഗാസ്ത്രപാർഷദം, സാംഗോപാംഗാസ്ത്രപാർഷദം. യജ്ഞായ സങ്കീർത്തനായ യജന്തി ഹി സുമേധസഃ. യജ്ഞായ സങ്കീർത്തനായ യജന്തി ഹി സുമേധസഃ. ये श्लोक श्रीमद् भागवत में आता है. और हमारे लोगों का इतना भाग्य है कि हम लोग नौकरी करने आए हैं सब लोग, है ना. आप लोग ने तो भक्त बनने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं दिया था ना. आप सब लोगों ने नौकरी करने के लिए अप्लाई, कोई बिलिंग में, कोई नर्सिंग में, कोई मैनेजर में, या हाउसकीपिंग में, किसी सुपरवाइजर पोस्ट में. लेकिन हमारा भाग्य यह है कि हमारे काम की जगह पर हमको भगवान के विषय में ज्ञान मिलने की योजना बनाई गई है. तो आप लोग भगवान का भक्त बनने के लिए शायद नहीं आए होंगे, लेकिन जानते अजानते हुए आप भगवान का भक्त बनने के रास्ते पर ऑलरेडी चल रहे हैं. 8 घंटे यहाँ पर आप काम करते हो तो 8 घंटे में आपको यहाँ पर नॉन वेज खाने का मौका नहीं मिलता है, हाँ, लहसुन प्याज खाने का मौका नहीं, चाय कॉफ़ी पीने का मौका नहीं मिलता है. यहाँ पर व्यभिचार नहीं होता है, जुआ नहीं खेलते, कोई नशा नहीं करता है, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट कोई यहाँ पर, दारू यहाँ पर कोई लेता नहीं है. तो कम से कम क्यों ना हो 8 घंटे आप यहाँ पर एक शुद्ध वातावरण में रह रहे हो, पवित्र वातावरण में. सब जगह भगवान के फोटो लग रहे हुए हैं, सब जगह भगवान का नाम गूंज रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यानी कि उपजीविका करने के जगह पर आपको परमार्थ जीवन भी करने के लिए मौका मिल रहा है. ये कहाँ पर होता है क्या दुनिया में और कहीं? इसलिए नहीं कि हमारे पास हो रहा है इसलिए हम लोग बड़ा गर्व से बोल रहे हैं, लेकिन किसी भी जगह पर दुनिया में जहाँ पर बिजनेस करते हैं, जहाँ पर पैसे का काम होता है, वहाँ पर भगवान के विषय में कोई गड़बड़ नहीं होता है. लोग भगवान को अपने बिजनेस में मिक्स नहीं करना चाहते, वो भगवान को ड्रॉवर में रखना चाहते हैं, प्राइवेट घर के अंदर के ड्रॉ कबर्ड के ड्रॉवर में. आम सभा में, आम जनता में ओपनली कोई भगवान का भजन नहीं करना चाहते, बोलते ये हमारा प्राइवेट मामला है. लेकिन फिर भी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का ऐसा भाग्य है कि यहाँ पर आप नौकरी करते करते ही ऑटोमेटिकली आपको भगवान के विषय में जानकारी हो रही है. आप उसको दुर्लक्ष करके अपना अपना काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आपको भगवान के विषय में बिना किसी प्रयास करने से अपने आप जानकारी मिल सकती है. खाली कान और आंखें खोल के रखेंगे तो आपको सब जगह पर नॉलेज मिलता रहेगा. मॉर्निंग प्रेयर में आएंगे तो 5 मिनट के लिए आपको श्रीमद् भागवत सुनाई पड़ेगा, और किसी दिनों में चैतन्य शिक्षा अष्टकप में प्रार्थना का अर्थ सुनाई पड़ेगा. दोपहर को मंगलवार में आएंगे तो आपको यहाँ पर 1 घंटा भगवान के विषय में ज्ञान मिलेगा. तब फेस्टिवल में आप आएंगे तो आपको फेस्टिवल के विषय में जानकारी मिलेगी, गौर पूर्णिमा क्या होती है, जन्माष्टमी क्या होती है. हम लोग खाली ऐसा देखते हैं, रंग पंचमी क्या होती है, किसको मालूम है? इतना ही मालूम, रंग पंचमी के दिन लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं और जबरदस्ती उनको फूका मारते हैं और कलर फेंकते हैं उनके ऊपर, ये हमारी नॉलेज है. लेकिन रंग पंचमी, होली कितना श्रेष्ठ प्रेम का उत्सव है, उसके पीछे क्या कहानी है कहीं किसी को बताता नहीं, ना माँ बाप को मालूम है, ना बच्चों को मालूम है, ना बुजुर्गों को मालूम है. तो ये श्लोक जो है ये इतना महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भागवत में आता है. इसमें कहा गया है कृष्ण वर्णम त्विसा अकृष्णम. उन्होंने कलयुग में आने वाले भगवान का जो अवतार होने वाला है कलयुग में, जो भगवान जिस रूप में आने वाला है उसका वर्णन किया जा रहा है. वो कहते हैं कि वो कृष्ण ही है स्वयं, लेकिन उनका वर्ण कृष्ण का नहीं है, यानी रंग वो कैसा है, अकृष्णम, यानी वो गौर वर्ण के है, भगवान सांवले रंग के है ना. कृष्ण को सब जानते हैं सांवले रंग का है, नीला रंग का है भगवान. लेकिन वही नीले रंग के भगवान जब कलयुग में आते हैं तो वो स्वर्ण रंग के बन के आते हैं. वो क्यों बताऊंगा आपको मैं. स अंग उपांग अस्त्रम. जैसे भगवान आप आते हैं ना कभी भी तो आप देखते हैं ना नरसिंह भगवान के कितने हाथ थे, 10 हाथ थे उनके, 8 हाथ थे और 8 हाथ में 8 शस्त्र थे उनके, है ना. ऊपर से 2 हाथ में नाखून और नाखून से उन्होंने फाड़ डाला। श्री कृष्ण भगवान आए तो कौन सा अस्त्र लिखे है? हाँ बस, और कुछ नहीं लिखे है। और श्री कृष्ण भगवान के पास धनुष था, उसका नाम था शारंग। श्री कृष्ण भगवान के पास गदा थी, उसका नाम क्या था? कौमुदकी गदा थी। श्री कृष्ण के पास हर शस्त्र था, लेकिन प्रधान शस्त्र चक्र था। ये भी सही है, गलत नहीं है। हम लोगों को चक्र पता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान अगर भागवत पढ़ेंगे तो कितने युद्धों में उन्होंने धनुष बाण का उपयोग किया है, गदा का उपयोग किया है। जब उत्तरा के गर्भ में गए थे परीक्षित को बचाने के लिए, तो किसका प्रयोग किया था उन्होंने? हाँ, गदा घुमाया था, और गदा घुमाकर ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया था उन्होंने, अश्वत्थामा के। ऐसे भगवान ने सभी अस्त्रों का उपयोग किया है। और वामन देव का अस्त्र क्या था? छल, छल उनका अस्त्र था। वो बच्चे बनकर आए थे, अचानक इतने विशाल हो गए कि बाप रे, सब विश्व को नाप लिया उन्होंने। वराहदेव का अस्त्र क्या था? चारों थे, शंकर चक्र पद्म गदा, मतलब गदा और चक्र। ये मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं एकदम लगातार से बताते जाऊंगा तो आप सब लोग हाँ करके सो जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं होगा, वो ऊपर से चला जाएगा। लेकिन प्रश्न पूछूंगा, आप सोचेंगे, मैं बताऊंगा तो आपको याद रहेगा, है ना। और ये सब जानना जरूरी है। अब हमको नॉलेज क्या है कि भाई अभिषेक बच्चन की गर्लफ्रेंड कौन है, हमको मालूम है। शाहरुख खान का कहाँ से और किसका लव अफेयर चल रहा है वो हमको पता है, लेकिन भगवान की कितनी रानियां थी उनका नाम क्या है मालूम नहीं, समझा। इसको दुर्भाग्य कहते हैं, क्योंकि हमको जो पता होना चाहिए वो पता नहीं है, जो नहीं पता होना चाहिए सब पता है। जिस चीज़ से हमारा कल्याण होने वाला है वो हमको पता नहीं है, और जिससे हमारा पतन होने वाला है, ह्रास होने वाला है, नुकसान होने वाला है, वो सब हमको पता है। ये हमारा कलयुग का दुर्भाग्य है। तो यहाँ पर कहा है स अंग उपांग अस्त्रम, कि बाकी सभी अवतार में वो कुछ ना कुछ शस्त्र अस्त्र धारण करके लेके आते, प्रधान अस्त्र। जब प्रभु रामचंद्र आए तो क्या लेके आए थे? हाँ, धनुष और बाण लेके आए थे, है ना। वो राम बोलते ही धनुष बाण नजर आता है, इतना उनका शस्त्र और अस्त्र साथ में है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो कोई अस्त्र लेकर नहीं आए, खाली अपने साथियों को लेकर आए, अंग और उपांग, यानी कि क्लोज फ्रेंड्स और दूसरे लेवल के फ्रेंड्स। अंग यानी कि बहुत क्लोज, जो पांच लोग थे साथ में थे उनके, और बाकी उपांग यानी कि बहुत सारे भक्त थे उनके, वो सब लोगों को लेकर आए, वही उनके अस्त्र थे। और क्या किया उन्होंने, उन्होंने क्या काम किया? जैसे प्रभु रामचंद्र ने क्या काम किया बताओ? अरे प्रभु रामचंद्र क्या काम मालूम है आपको? रावण को मारा ना। अरे बोलो ना, ये समझना कि आपके बच्चे आपको पूछ रहे हैं, आपका छोटा भाई पूछ रहा है, और ऐसा ब्लैंक देखेंगे तो दीदी को तो कुछ मालूम ही नहीं, कुछ भी पूछो ना ही बोलती है, ऐसा हो जाएगा ना आपका। तो वैसे आप सोचो कि प्रभु रामचंद्र ने क्या किया, रावण का वध किया। खाली रावण का वध किया क्या? राक्षस वंश का पूरा नष्ट वध किया उन्होंने, रावण की पूरी फैमिली का वध किया, मिलजुल के सब लोग ने मिलकर। वराहदेव ने किसका वध किया? यस, देखो हम सब लोग भारतवासी है, मैं इंग्लैंड के लोगों को नहीं पूछ रहा हूं, अमेरिका के लोगों को नहीं पूछ रहा है वराहदेव कौन है और वराहदेव ने किसका वध किया। भारतीय लोगों को पूछ रहा हूं कि वराहदेव ने किसका वध किया, नरसिंह भगवान ने किसका वध किया? उसमें अंतर है ना कि दो एक ही है, दो भाई है दोनों, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। मत्स्य अवतार ने क्या किया? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो उसका उत्तर मैं ही बोल देता हूं। मत्स्य अवतार ने वेदों को बचाया प्रलय काल में से, मछली बनकर सब वेद इकट्ठा किए और सुरक्षित जगह पे लेके गए और वेद बचा के रखे उन्होंने। कुरु अवतार ने क्या किया? समुद्र मंथन में अपना पीठ पर मंदार पर्वत को रखा, और कि पीठ पर रखकर उसको घुमाया गया, सपोर्ट दिया, सपोर्ट, वो ऐसा हिल रहा था समुद्र में, कुछ सपोर्ट नहीं था, नीचे पानी पानी था, तो मत्स्य कुरुमा अवतार यानी कछुआ बनकर भगवान ने नीचे सपोर्ट दिया, उसके ऊपर उनके पीठ के ऊपर पूरा पर्वत, और पर्वत को रवि की तरह घुमाया गया। तो हर अवतार ने भगवान ने कुछ ना कुछ कुरु युग का कार्य किया है ना, विशेष कार्य के लिए वो आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कार्य के लिए आए थे? कोई शस्त्र लेकर नहीं आए वो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई चक्र कोई गदा धनुष कुछ लेकर नहीं आए वो, और साथ में उनके खाली उनके भक्त थे, यही उनके अस्त्र थे। और क्या किया उन्होंने? हरे कृष्ण महामंत्र सब दुनिया को बांटा उन्होंने। यज्ञाय संकीर्तनाय प्रायैर, उन्होंने भी एक यज्ञ किया, लेकिन वो यज्ञ जो है वो ऐसा अग्नि वाला यज्ञ नहीं था। वो यज्ञ ये था कि हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से उन्होंने सब लोगों का उद्धार किया। बाकी युगों में तपस्या करनी पड़ती थी, जंगल में जाना पड़ता था, सब कुछ परिवार छोड़ के धन छोड़ के जाना पड़ता था, बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है भगवान को प्राप्त करने, ध्यान करना पड़ता था, मंदिरों की पूजा करनी पड़ती थी, यज्ञ करने पड़ते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कलयुग में ऐसा कोई करने के योग्य ही नहीं है। कलयुग में क्या, अभी आपको बोलेंगे यज्ञ करो तो किसको आता है यज्ञ करने को? वो क्या होता है, वो पंडित जी आके कुछ चला देते हैं पतरे के डब्बा में और क्या बोलते हैं उसको ही मालूम। हमारा काम भाई जल्दी निपटो, टाइम हो रहा है लोगों को खाना खिलाने का, जल्दी जल्दी करो, बस उनको दक्षिणा दिया काम हो गया, जय निकल गए। वो भी करते करते बीच में क्या बोलते पूछते हमको, थोड़ा विधि करते पूछते कितना स्कोर हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया में कितना हो गया, वो अभी विराट कोहली ने कितना मारा, फिर वापस यज्ञ करते हैं, फिर बोलते आउट हो गया क्या ऐसे पंडित जी होते हैं। आपके घर में अनुभव किया कभी आपने? हमारे घर में मेरे कई बार पूजा हो गई है और मैंने खुद हमारे पंडितों को पूछते हुए देखा है कि अंदर मैच चल रही है, मेजोरिटी घर के जितने पूजा के लिए आए हैं सब लोग अंदर बैठे मैच देख रहे हैं, तो पंडित का भी दिल ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है क्या हुआ तो उसका एक धंधा है तो वो कर रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन बीच बीच में उसका ऊपर नीचे होता है तो पूछता है वो कितना स्कोर हो गया। तो घर के लोग जिन्होंने पूजा के लिए बुलाया वही बोलते हैं हाँ अभी सेंचुरी में दो बाकी है बोलते हैं, फिर वापस वो कुछ मंत्र बोलता है सेंचुरी हो गया कि अरे वाह वाह बहुत खुश हो जाता है, वापस एक मंत्र बोलता है हरी बोल थैंक यू वेरी मच। ये सब कलयुग के लोगों का अवस्था है, किधर भगवान किधर क्या, रखो उसको ड्रॉवर के अंदर, क्या टाइम पास करते हो, खोलो सुबह अगर मुझे दिखाओ बंद कर दो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मत दो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कलयुग में लोगों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, ना बीवी ना बच्चा ना बड़ा ना भैया, क्या है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। और कलयुग का ऐसा लक्षण है कि जिसके पास रुपया है वो चाहे कितना भी बुरा हो, अंगूठा छाप हो, एकदम बेकार आदमी हो, वो बड़ा आदमी है कि नहीं। तुम्हारी बिल्डिंग में भी अगर कोई एकदम ना अंगूठा छाप नंबर वन, उसका पिताजी का वो कुआं है उसके अंदर से पानी बेचता है वो, और इतनी बड़ी 4 किलो की सोने की रिंग पहन के रखी है गले में, हाथ में ऐसा एक कड़ा पहन के रखा है 3 किलो का, ऐसा होता है कि नहीं, वो सबसे बड़ा आदमी। और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं पैसा है तो बड़ा आदमी वो, ये कलयुग का लक्षण है। और कोई PhD भी है लेकिन पगार बहुत कम है तो उसको कोई वैल्यू देता नहीं, कोई भाव नहीं देता उसको। तो कलयुग का सबसे लोगों का एक ही मन में होता है पैसा होना चाहिए बस। इंडिया में क्या रखा है, फॉरेन में जाओ वहां पर 10 गुना पगार मिलता है, वहां पर रहो पैसा कमाओ प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी ये सेवा व्यवहार करने में किसको टाइम, किसका कल्याण हुआ है। तो ऐसे समय पे लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, इतनी कठिन हो गई है, तो उस समय वो आते हैं और देखते हैं मैं इनको क्या बताऊं, यज्ञ करने को बताऊं तो वो भी नहीं आता है, ध्यान करना तो दूर हो गया 2 मिनट में, इधर 2 मिनट के अंदर एक बार व्हाट्सएप, एक बार फेसबुक, एक बार SMS, एक बार मेल, एक बार कोई पिक्चर, एक बार कोई वीडियो, एक बार एक क्लिप, एक बार क्या, 1 मिनट के अंदर कितना चेंज होता है, होता है कि नहीं होता है। कौन सा दबाओ, कुछ ये दबाओ ये हो गया दूसरा दबाओ, वापस एक राउंड मार के वापस वही दबाने का, वापस नया कुछ आएगा देखने का उसके अंदर, इतना मन चंचल है, किसी एक चीज पे फिक्स नहीं होता है, इतना मन चंचल है। तो क्या कर सकते हो, ध्यान करना, ध्यान का मतलब क्या है, सब कुछ छोड़ के एक चीज पर ध्यान करना है, बहुत मुश्किल है। आप बोलेंगे हमको बोलेंगे आज एकादशी का दिन है आपको 2 घंटा बैठ के जप करना है, कर सकते क्या 2 घंटे में, कितना चुड़बुड़ मतलब ना चुड़बुड़ इधर माइंड उधर माइंड, बोलो क्या ब्रेकफास्ट में क्या है, उसके बाद में 9 कब बजने वाले, इतना देर जप करने का समझ में नहीं आ रहा क्यों बैठे हुए लेकिन 3 घंटे का पिक्चर देखने को तकलीफ है क्या, ऐसा बैठेंगे खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, मम्मी बोलती दूध पियो, अरे दूध बाद में तो देखो कितना, पता नहीं क्या होगा, शादी होगी कि नहीं होगी उसकी मैं देख रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो मुझे। या तो क्रिकेट की मैच चल रही है 9 to 5, खाना पीना सब खत्म हो गया, इतना दिल लगता है हमारा उसके पर। मैं 65 में एक बार क्रिकेट का मैच देखा था, उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, आज क्या वैल्यू है उसका? आज नया मैच चल रहा है तो उसको देख रहे हैं, लेकिन हमने उस दिन 8 घंटा वेस्ट किया था। तो बहुत जरूरी मैच है, एकदम बहुत क्रुशल है। 3 मैच हो गए हैं अभी, चौथा मैच में जो जीतेगा वो जीत जाएगा सीरीज। ऐसा हम लोग ने इतना समय बर्बाद किया है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं उस पर इतना समय दिया है, इतना ध्यान लगाया उसके अंदर, और जो चीज़ करनी चाहिए वो हम नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति देखकर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ठीक है, ये गली के लोगों को तो ज़्यादा बुद्धि भी नहीं है, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी किस चीज़ पर होता नहीं है, मन कहीं लगता नहीं है, याद तो रहता ही नहीं है कुछ, आज बोलेगा तो दोबारा फिर पूछते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो इनके लिए कुछ एकदम सिंपल तरीका लेके आते हैं, ये तरीका लेके आते हैं सिंपल कि सब लोग पास होना चाहिए, ऐसा पेपर बनाएंगे इनके लिए। होता है ना ऐसा कभी कभी, आप यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, ऐसा रहता है सब मैच फिक्स रहता है पूरा, खाली आने का उधर सर को सलाम करने का, बैठ जाने का, पेपर मिलेगा हाथ में, आंसर शीट भी मिलेगा, कुछ लिखने का बहाना करने का। उसके ग्राउंड फ्लोर के अंदर कुछ लोग बैठे रहते हैं, वो आपका पेपर लिखते रहते हैं, आप ऊपर ऐसा नाटक करने का, 3 घंटा बैठने का, पैसा देकर रखा रहता है, नीचे जाके बहुत लोग ऐसे बैठे रहते हैं, उनके पास किताब रहती है और सारे आंसर वो पेपर में उतारते हैं, आपका नंबर लिख के ऊपर दे देते हैं, आपका जो लिखा हुआ है उसको फाड़ के फेंक देते हैं, आपका नंबर का नीचे लिखा हुआ है ऊपर जमा कर देते हैं। तो कोई लोगों को 75%, कोई लोगों को 85% मार्क मिलते हैं, और आपको कितने मार्क्स चाहिए, 75 चाहिए तो उसका एक फ़ी रहता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा लेकिन सच्चाई है ये। हमारे पास 2 हॉस्पिटल है वहाँ पर, वो आके बताते हैं, सर हमको कुछ कॉलेज में पढ़ाया नहीं, कोई टीचर आया है क्लास से, क्लास में कुछ पढ़ाया नहीं हमको, कुछ भी कोर्स ले लो आप, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, डिप्लोमा में जाओ, नर्सिंग में जाओ, ऑप्थाल्मेट्री में डिप्लोमा में जाओ, किधर भी किस भी कोर्स में जाओ, खाली फी भरने का, कॉलेज जाकर टाइम पास करके आ जाने का, कोई टीचर नहीं आता है, कोई क्लास नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जब एग्जाम आती है तो सब टीचर आ जाते हैं आपकी फीस इकट्ठा करने के लिए, ब्लैक मनी, ताकि आपको अभी एग्जाम के टाइम पे वो बताते हैं कितना देना है आपको, उतना देकर सब लोग पास हो जाते हैं। और जब हमारे पास आते हैं जॉब लेने के लिए, उनको एक अक्षर भी नहीं आता है जो विषय में उन्होंने डिप्लोमा किया है, फिर हम लोग सब सिखाते हैं उनको आपस एक बार भक्ति विधान में आके, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनका डिग्री है उनके पास। इतनी भयंकर अवस्था है। तो वैसे जिनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, उनको भी एग्जाम पेपर सेट करने का तो कैसे करने का। तो महाप्रभु चैतन्य देखते हैं कि करीब के लोग इतने पतित हैं, तो ना ध्यान होगा, ना यज्ञ होगा, ना पूजा होगी, ना कुछ होगा, ना मंत्र जपना होगा, याद करना श्लोक नहीं होगा। इनको ऐसा मंत्र देते हैं कि जो सब लोग कर सकते हैं, बच्चा भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, आदमी भी कर सकता है, बुढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, काला भी कर सकता है, गोरा भी कर सकता है, विदेशी कर सकता है, देशी भी कर सकता है, गांव का कर सकता है, शहर का कर सकता है, अमीर कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, तंदुरुस्त भी कर सकता है, वो बीमार भी कर सकता है। ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढ के निकालो कि हर लो आदमी बोलेगा कि मैं कर सकता हूँ इसको। खाली आपको पूछता हूँ ये आप कर सकते हो क्या, हाँ हाँ, उसका उत्तर हाँ आना चाहिए। तो भगवान ने ऐसा मेथड ढूंढा, तरीका ढूंढा कि जिसको सब लोग कर सकते हैं और सब लोग उसके पास भी हो सकते हैं। वो क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जो यज्ञाय संकीर्तनाय प्रायर, उसका मतलब भगवान ने हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ जो है वो स्थापन किया, और वो पात्रे अपात्रे ना देखिला स्थाने अस्थान, उन्होंने ये भी देखा नहीं कोई योग्य है कि नहीं है, कोई क्वालिफाइड है कि नहीं है, स्थान भी दिखाने के, ये अच्छी जगह है बुरी जगह है, ये देने के लिए सही जगह कि नहीं देखा है, हर जगह पर उन्होंने ये दान दिया भगवान सबको, सबको दिया, कोई भेदभाव नहीं किया कि ब्राह्मण है कि शूद्र है कि पंडित है कि अनपढ़ आदमी है कि चांडाल है कि म्लेच्छ है कि यवन है, सबको दिया, सबको कंप्लीट बिना भेदभाव का। इस भाव से दिया उन्होंने कि सब लोगों को भगवान को मिलने का, भगवान तक पहुँचने का मार्ग होना चाहिए, अनपढ़ अशिक्षित होने पर भी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये उन्होंने साबित करके दिखाया। और पूरे विश्व को जब वो आए थे 500 साल पहले, विश्व को हरिनाम संकीर्तन से उन्होंने डुबो दिया पूरा कम्प्लीटली। और जितने भी लोग उस समय थे दुनिया में, जितने भी जीव थे, लोग भी नहीं, जितने भी कुत्ता बिल्ली पंछी मच्छर कीटक मछली जितने भी जीव थे, वो सब लोग महाप्रभु चैतन्य सके समय जो जीवित थे वो उनके जीवन के अंत में भगवत धाम में चले गए, उनका मोक्ष हो गया पूरा। क्योंकि एक भक्त ने उस समय वरदान मांगा था भगवान से कि भगवान आपका अवतार तो इतना दयालु अवतार है, आपके अवतार में कोई कंडीशन ही नहीं है। प्रभु रामचंद्र तो धनुष बाण लेके आए थे, जो नहीं मानता है उसको बाण मारते थे। वो रावण ने गुस्सा की किया और सीता का हरण किया, बाण मार के खत्म कर दिया उसको। कृष्ण भगवान ने वही किया, हरिश्वसुर आया मार दिया, कंस आया मार दिया उसको, जितने भी ऐसे थे जो आए उनको उड़ा दिया उन्होंने, जो भक्त थे उनका उद्धार किया। हर एक भगवान के अवतार ने कुछ ना कुछ लेके आए थे वो शस्त्र अस्त्र, और उससे उन्हें दुश्मनों का नाश कर दिया। विनाशाय च दुष्कृताम। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने किसी का वध नहीं किया, तो उन्होंने किसका वध किया? उन्होंने पापियों का वध नहीं किया, उन्होंने पाप का वध किया। ऐसा कहा गया है कि पापियों को नहीं मारना चाहिए, उनके अंदर पाप है उसको मारना चाहिए, क्योंकि पापी कोई होता नहीं है, पाप उनको पापी बना देता है। पहले सबसे पहले सब व्यक्ति लोग शुद्ध होते हैं, लेकिन जब पाप आता है तो वो पापी बन जाते हैं। तो पाप को नष्ट कर दिया तो वो आदमी शुद्ध हो जाएगा। जैसे कालिया के अंदर बहुत विष था, जब भगवान लात मार मार कर सब विष उतार दिया उसका, तो शुद्ध भक्त बन गया, वो संत बन गया एकदम, क्योंकि विष था तब तक वो पापी था, जहरीला नाग था वो। जब लात मार मार कर सब विष उगाल दिया उससे, तो शुद्ध भक्त बन गया वो, भगवान के चरणों में गिर गया वो, बोला माफ करना मुझे, मैं आपका भक्त बनना हूँ, बन गया। तो ऐसे भगवान ने सबको, किसी का वध नहीं किया, यहां तक कि दो व्यक्तियों का वध करने वाले थे वो, जगाई और मदाई नाम था उनका। तो इतने भयंकर पापी थे वो लोग, उन्होंने कितना अपराध किया था, कितना पाप किया था। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मारा मटका लेके, जान से मारने के लिए। वो बलराम जी के अवतार हैं, ऐसा नहीं कि खाली कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और बलराम भैया जो है वो नित्यानंद बनकर आए, और नित्यानंद का मटका मारकर, दारू का मटका मारकर उनका सर फोड़ने का प्रयास किया। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और चक्र चक्र करके आह्वान किया उन्होंने, उनके उंगली पर चक्र प्रकट हो गया। जिन्होंने किसी अवतार किसी शस्त्र अस्त्र को लाया नहीं था, लेकिन जब अपने भक्त का अपराध होते हुए देखा, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के सर से खून बहते हुए देखा, तो चक्र का आह्वान किया तुरंत। मतलब क्या है, पावर है उनके पास, लेके नहीं आए वो, लेकिन जब लगा कि अभी करना चाहिए तो उन्होंने चक्र का आह्वान किया। चक्र हाथ में, हजारों सूर्यों की तरह प्रकाशमान चक्र हाथ में घूमता हुआ प्रकट हो गया। तो जख्मी हो गए नित्यानंद प्रभु जो है, आधे बेहोश हो गए थे वो, उठ के आ गए और महाप्रभु के चरणों में गिरे। और उन्होंने क्या बताया मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई उनको कि हे चैतन्य महाप्रभु, हे गौरांग महाप्रभु, आपका ये अवतार पतितों का उद्धार करने के लिए आया है। अगर आप इस जगाई मदाई को मार डालोगे चक्र से, तो आपको कलयुग में बहुत सारे लोगों को ऐसे मार देना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग के बहुत सारे लोग ऐसे ही है, ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए कि कलयुग के लोग कम अधिक सोचेंगे तो इसी कैटेगरी के हैं सब लोग, तो आप क्या सबको मार दोगे, तो फिर उद्धार किसका करोगे? तो उनके कहने से भगवान ने चक्र को वापस भेज दिया और जगाई मदाई को मारा नहीं उन्होंने। और ये चक्र को देखकर ऑलरेडी डर गए थे वो जगाई मदाई, तो भगवान के चरणों में गिर रहे, बोले माफ करो, मत मारो, माफ करो हमको, हमने इनका अपराध किया, आप माफ करना, हमारा वध मत करना। तो भगवान ने उनको गले लगाया और एक सूचना दिया उनको, चेतावनी दिया, मैं आपके सारे पाप माफ कर सकता हूं, एक कंडीशन है मेरी। बोले क्या कंडीशन है भगवान, आप बोलो, जो कंडीशन फॉलो करने को तैयार है। बोले आज के बाद तुम पाप नहीं करोगे और भगवान का नाम जप करोगे। तो तुरंत हाँ कर देते हैं, तो भगवान को गले लगा देते हैं। और इतने पाप थे उनके, इतने पाप, यमराज भी परेशान हो गए थे उनका रिकॉर्ड रखते रखते। उसकी भी एक अलग कहानी दी गई है चैतन्य चरिता में, भागवत में, कि यमराज और यमदूत परेशान हो गए थे इन दोनों का पाप का रिकॉर्ड रखते रखते। बोले पाप रखने, रिकॉर्ड रखने में इतना तकलीफ, तो पाप का दंड देने में कितना तकलीफ। हाँ, एक अगर समझो दस दस लक्ष आपके अपराध में नोट करके रखे, तो दस लक्ष अपराध को दंड भी देना पड़ेगा ना, तो वो कितना बड़ा काम है। तो बोले जिनके अपराध का रिकॉर्ड रखना इतना मुश्किल, उनका अपराध का दंड देना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने कहा मेरा एक कंडीशन है, तो उन्हें हाँ बोला। तो भगवान ने जैसे ही गले लगाया, सारे अपराध नष्ट हो गए उनके। ऐसा किसी भी अवतार में कभी हुआ नहीं है, हर अवतार ने भगवान ने दंडित लोगों को किया है, पापी लोगों को दंड दिया भगवान ने। आप अवतार का कथा पढ़ो सब लोग का, हर अवतार ने भगवान ने कितने लोगों को दंड दिया है, लेकिन इतनी माफी, इतना उदारता भगवान ने किसी अवतार में दिखाया नहीं किसी भी। इसका प्रमाण क्या है कि जब यमराज को मालूम पड़ा ना, अरे वो दो लोगों का रिकॉर्ड रखते रखते मेरे स्टाफ सब एग्जॉस्ट हो गए थे, लीव मांग रहे, लीव सर छुट्टी दो, थक गए हम लोग इनका रिकॉर्ड रखते रखते। बोलते कबड़ फुल हो गए हमारे, जमीन में गड्ढा खोद के हमने अभी रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है, जमीन भी भर गई, अभी कितने गड्ढे खोदने का, सब जगह जमीन पे गड्ढे गड्ढे हो गए और याद नहीं आ रहा है कौन से गड्ढे में कौन सा रिकॉर्ड रखा है, कहाँ से शुरू करना है, दंड देना है इनको। इतने परेशान थे तो यमराज को खबर मिल गई, ये दोनों का भगवान ने उद्धार कर दिया, एक गले लगा दिए, सारे पाप माफ कर दिए। तो यमराज को विश्वास नहीं हुआ, बोलता मेरे को जाके देखने का है, मैं कैसे मानूं कि सारा रिकॉर्ड डिलीट करने का मेरे को अभी आपने बहुत दिन से अनेकों फाइल बना के रखी है और आपको ऑर्डर आता है कि इसको डिलीट करो, तो आप बोलेंगे विश्वास नहीं होता है मुझे, पहले मैं सर को पूछती हूँ कि भाई ये सही है कि नहीं। वैसे यमराज को विश्वास नहीं हुआ तो अपना रेड़ा ना रेड़ा, उसका वाहन क्या है भैंसा रेड़ा, उसको लेके भगाते हैं, इतना जोर से भगाते हैं कि बेचारे के मुंह में झाग आता है, क्योंकि इतना जोर से कभी भगा नहीं था उसको आज तक। तुम्हारा लिमिट क्या है, चार गियर का तुम्हारा लिमिट है, तो पांचवें गियर में भगाए तो क्या ब्रेकडाउन हो गया ना, ब्रेकडाउन तो ब्रेकडाउन हो गया बेचारा, वो गधा पंक्चर हो गया, तो छोड़ना पड़ा उसको। तो यमराज देखा कि ब्रह्मदेव भी जा रहे हैं अपने हंस में बैठकर, आकाश से उड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी लिफ्ट मिलेगा क्या, तो बोला आ जाओ मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने, ब्रह्मा जी के स्वान पर हंस पर लिफ्ट लिया उन्होंने, और यमराज को हंस में बिठाकर ब्रह्मा जी बताने लगे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो यमराज जी वो कथा सुनकर राजहंस पर ही बेहोश हो गए, उनको यकीन ही नहीं हुआ क्या ऐसा भी हो सकता है क्या लाइफ में, इतना सारा रिकॉर्ड उनका रखा था मैंने पापियों का, उतना सारा रिकॉर्ड एक क्षण में डिलीट करने का, तो बेहोश हो गए। तो बेहोश अवस्था में अर्थ पे पहुंच गए, सफर में बेहोश हो गए ना, जैसे हम लोग कैसे दादर से निकले गाड़ी में सो गए और स्ट्रेट नासिक में उठे, बीच में तो हरि बोल, वैसे उधर बेहोश बीच में हो गए उनकी कथा सुनते होते, सीधे पृथ्वी पहुंचने के बाद में उनको जगाया गया, अरे यमराज उठो उठो पहुंच गए पृथ्वी पर आ गए, देखो अभी अपनी आंखों देखा हाल देखो। तो यमराज उठ के देखते हैं कि हरे जगाए और मधाए हाथ उठाकर नाच रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग लोगों को बलात्कार करने में, लूटने में, आग लगाने में, चोरी करने में इतने पाप करते थे, दिन भर शराब के नशे में चूर होकर दिन रात लोगों को आतंक मचाते थे, वो लोग हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे हैं, वो भी आंखों से आंसू आ रहे हैं उनके प्रेम के, ऐसा नहीं कि कर रहे हैं बोर हो रहे हैं उनको, क्या करें बोल रहे तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, दिल से नाच रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं प्रेम के। तब जाकर यमराज को यकीन हुआ कि ऐसे भी कोई कृपा होती है। तो क्या कहा मैंने, यज्ञाय संकीर्तनाय प्रायर, ये संकीर्तन यज्ञ का स्वीकार करके, संकीर्तन यानी साथ में मिलकर किया हुआ कीर्तन, इस विधि को स्वीकार करके जग के सबसे बड़े पापी जगाई मधाई उनका उद्धार हो गया। आप लोगों को पता है ये कौन थे लोग, रावण और कुंभकर्ण के अवतार थे वो, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये पहले, सेकंड रावण कुंभकर्ण और थर्ड दंतवक्र और शिशुपाल। सबसे पहले कौन थे, जय और विजय वैकुंठ के द्वारपाल थे, इनको शाप मिला था कि तुमको तीन बार राक्षस बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनकर आए और भगवान ने वराह और नरसिंह देव के रूप में उनका वध कर दिया। फिर दोबारा आए वो रावण कुंभकर्ण, तो भगवान रामचंद्र ने उनका वध कर दिया। याद रहेगा ना कि नेक्स्ट टाइम बोलेंगे प्रभु जी मालूम नहीं मुझे ये सब कुछ, कभी बोला था आपने, ये सब हमारा नॉलेज है हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति का, हमारे देश का। और तीसरी बार क्या हुआ, दंतवक्र और शिशुपाल बनकर आए वो, उनका वध किसने किया, कृष्ण भगवान ने किया। शिशुपाल का राजसभा में किया, उधर यज्ञ में किया, दंतवक्र का मथुरा में किया। चौथी बार भी आए वो जगाए मदाए बनकर, जब चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान ने इस बार उनका वध नहीं किया। सिग्निफिकेंट बात है ये, तीन बार भगवान ने उनका वध किया, चौथी बार वध नहीं किया, चौथी बार उनके पाप का वध किया। और वो दोनों को परम भक्त बनाकर भगवत धाम में वैकुंठ में भेज दिया उन्होंने। ये महानता है चैतन्य महाप्रभु के अवतार की, समझो आप इस बात को, ये समझना बहुत जरूरी है। एक दुनिया के संतों को पंडितों को पता नहीं है इस नॉलेज का कि महाप्रभु चैतन्य कौन है और उन्हें क्या किया काम, उनका सारा जो गौरव है ना वो छुपा दिया है, भक्त संत बनाकर उनको छुपा दिया है सब कुछ। लेकिन सत्य यही है, उन्होंने केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवा के उनको पाप शून्य कर दिया, उन्होंने अपराध शून्य बना दिया। और न केवल अपराध शून्य बना दिया, आज वो जगदानंद गोस्वामी और माधवानंद गोस्वामी के नाम के प्रसिद्ध है, जो जगाई मदाई नाम के गुंडे थे, नंबर वन के छठे हुए गुंडे थे वो, उनको महाप्रभु ने संत बना दिया। ये चमत्कार, ये किमया आज तक किसी अवतार ने नहीं किया है। तो इसलिए चौथे पाठ में क्या कहा है लोग श्लोक के, यजंती ही सुमेधसः, यज्ञाय संकीर्तना है प्राय यजंती ही सुमेधसः। मतलब क्या, सुमेधा का मतलब क्या है बताओ? आप लोग काम करके बहुत थक गए हो, बहुत नींद आ रही है आप लोगों को, सुमेधा का मतलब क्या बताओ? हाँ, मेधा का मतलब क्या पहले बताओ, फिर सुमेधा का मतलब बताओ। हाँ, मेधा का मतलब क्या है? बुद्धि। मेधा का मतलब तल्लख बुद्धि, उसको मेधा कहते हैं। और सुमेधा का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छी बुद्धि। सु जब लगाते हैं ना किसी चीज को तो वो अधिक प्रमाण दिखाता है उसके अंदर। सु शब्द जो है, जो वो शब्द है जो किसी के आगे लगता है, तो वो जिसके लिए वर्णन किया जा रहा है उसकी महत्व बढ़ाता है उसको। तो मेधा मतलब बहुत बुद्धिमान, सुमेधा मतलब अति बुद्धिमान। तो इस विश्व में जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं उसको सुमेधा कहा जाता है। ये केवल स्त्री का नाम नहीं है, सुमेधा उन लोगों का नाम है जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो कलयुग में कहते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन आंदोलन का सहारा लेते हैं और इस यजंती यानी यज्ञ में भाग लेते हैं, क्योंकि वो बुद्धि के स्तर पर समझते हैं कि इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। समझो, हम आपको बताते हैं कि आप सब लोगों को एवरेस्ट चढ़ना है, तो बोलेंगे अरे बाप रे, किधर भक्ति विधान में काम करने को आए तो एवरेस्ट चढ़ने को बोल रहे हैं। बाद में बोलेंगे करना आपको कुछ नहीं है, हेलीकॉप्टर में बैठना है, हेलीकॉप्टर आपको पहुंचा देगा एवरेस्ट के ऊपर। तो आप बोलेंगे हाँ मैं भी आता, मेरे को सबसे पहले आना है, बोलेंगे कि नहीं? क्यों क्यों बोलेंगे, जब पहला हमने बोला था आपको कि आपको चल के जाना है एवरेस्ट पे, सब लोग पीछे हट गए क्योंकि वो मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन जब हमने कहा कि आपको भी कुछ नहीं करना है, खाली 15 अगस्त के दिन 7 बजे आना है, बस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जो पहले आएगा उनको पहले हेलीकॉप्टर में बिठाया जाएगा, वो हेलीकॉप्टर सीधा एवरेस्ट के ऊपर आके पहुंचाएगा झंडा लेके आपको डालने का उधर, बस उधर फिर वापस कैसे आने का? हाँ वापसी के लिए भी है, डोंट वरी, वापस भी आपको लेके आएंगे। तो सब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे बोलो? सब लोग कब आते हैं बताओ? जब कुछ चीज़ बड़ी आसान होती है। आपको बोलेंगे कि जलेबी बना लेके आपको आना है, बोले जलेबी किसको बनाने को आती है? लेकिन हम बोलेंगे जलेबी खाने को आना है, तो कोई बोलता है क्या मैंने, मुझे नहीं आना है, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं आऊँगी, मैं क्यों आऊँ, ऐसा बोलते हैं क्या आप लोग? जो चीज़ आसान होती है वो सब लोग उसको करना चाहते हैं, और वो आसान चीज़ करने से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा तो सब लोग आएंगे भाग के। कठिन चीज़ बताएंगे तो बोले कौन करेगा? उस तरह से सुमेधा मतलब क्या है? वो बुद्धि के मार्ग में आप जानते हो कि सबसे आसान तरीका है भगवान की प्राप्ति करने का। कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, कोई घरदार छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई धन दौलत को त्याग करने की जरूरत नहीं, कोई सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कोई इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो उसी से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये जानते हुए बुद्धिमान लोग कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत श्लोक में लिखा है जो मैंने आपको बताया अभी। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है, उसका वर्णन भी दिया, पूरा शब्दशः अर्थ भी दिया है। इतनी बड़ी कृपा कलयुग में है और चैतन्य महाप्रभु ने ऊपर से वरद भी दिया है। सब लोग हाथ ऊपर उठाओ, ऐसे सब लोग उठाओ, एक बार ऊपर जोर से खींच के उठाओ और बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। उन्होंने कहा आपको कल दो चीज करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और मेरे भक्त का अपराध नहीं करना है। और साथ में क्या बताया, मेरे भक्त का अपराध नहीं करना है लेकिन मेरे भक्त की सेवा करनी है। जहां मौका मिला, जितना मौका मिला, जितने आपको कर सकते हो, मेरे भक्त की सेवा करनी है। ये दो चीज करने से चैतन्य महाप्रभु ने वरदान दिया है कि ये दो चीज जो करेगा उसे मैं मेरे भगवत धाम में ले जाऊंगा, उसको अलग से कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। पिछले युगों में इतना कठिन तपस्या लोग करते थे, विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तप किया, इतना लाइफ भी किसी का होता नहीं, तो 60,000 तप क्या करेगा वो, है ना, उतना लाइफ ही नहीं तो किसका। एक साल भी तप नहीं कर सकता आदमी, एक महीना भी नहीं कर सकता है, बोलो, तो तप करना दूर की बात है। वो बोलता है जो करते हैं करते रहो, काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, परिवार में हो, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, रिलेटिव्स है, कर्तव्य है, कोई बात नहीं, करते रहो आराम से, खाली मेरे महामंत्र के जप को ऐड करो लाइफ में। सुबह उठो, सब कुछ करने के पहले भगवान का नाम ले लो अच्छी तरह से, आधा पौना घंटा मेरे नाम को भजो अच्छी तरह से, और दिन में काम करते समय किसी का अपराध मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, खास करके जो भगवान के भक्त है उनका दिल मत दुखाओ, हो सके तो उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, क्योंकि मैं मेरे भक्तों को बहुत चाहता हूँ। मेरे भक्त जो होते हैं मेरे बड़े प्रिय होते हैं, और उनको जो प्रसन्न करता है वो ऑटोमेटिकली मुझे प्रसन्न करता है। बस इतनी दो बातें बताइए, और इससे आगे आसान क्या करना चाहिए बताओ आप, भगवान इतने दुर्लभ हैं वो। हाँ, नारद मुनि, सुखदेव, ब्रह्मा, शिव आदि को भी दर्शन नहीं देते हो वो भगवान। अगर कलयुग में भगवान का नाम लेके ही केवल इतना करने से प्राप्त हो सकता तो आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बोलेंगे नहीं अभी नहीं, अगले जन्म में देखेंगे, बहुत टाइम बहुत बिजी है हम लोग। तो क्या कहते हैं उसको मालूम है, दुर्भाग्य कहते हैं, दुर्दैवम इद्रशमिहा जनि न अनुराग। हम लोग सुबह गाते हैं ना रोज, कौन सा नंबर का श्लोक है वो, नाम नाम कारी बहुदा निज सर्वशक्ति त्रत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः।
केवल गाने के लिए नहीं, समझने के लिए भी है वो। ये महाप्रभु चैतन्य का गुण गौरव है उसके अंदर। वो कहते हैं कि ये भगवान का नाम जो मैंने दिया आपको वो भगवान से अभिन्न है, सारी शक्तियां भगवान के उसके अंदर अर्पित की है। उनके जप में कोई कठोर नियम भी नहीं है, कभी सुबह करो, शाम करो, कभी बच्चा करो, आदमी करो, कोई ब्राह्मण करो, कोई बच्चा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि स्त्री के मासिक धर्म में भी वो जप कर सकते हैं, इतना भी छूट दे दिया है, कोई बंधन नहीं है उसको। तत्रार्पिता न नियम न कालहा, कोई नियम का स्मरण करने का नियम नहीं है उसका। एतादृशी तव कृपा भगवान ममा, इतनी कृपा कर दी भगवान ने, किसी भी समय, किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में हम लोग उसको जप कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं दुर्दैवम, अरे दुर्दैवम ये दृश्यमिहा, मैं देख रहा हूं जनी न अनुरागहा, ऐसा होने पर भी, इतना आसान करने पर भी जनी पब्लिक को उसके अंदर अनुराग यानी प्रेम नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है उसके अंदर, इंटरेस्ट नहीं है। पिक्चर में इंटरेस्ट है, स्त्री में इंटरेस्ट है, पुरुष में इंटरेस्ट है, पैसे में इंटरेस्ट है, लेकिन इतना करने बाद भी भगवान के नाम में उनको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि बड़ा दुर्दैव है। हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छी बीवी नहीं मिले तो बोले बैड लक बोलेंगे, मार्क नहीं मिलेंगे सीट में तो बैड लक बोलेंगे, बोलते हैं अगर बैड लक रहे, दो मार्क के लिए मेरा एडमिशन गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन वो बैड लक नहीं है, भगवान का नाम उपलब्ध होते हुए भी उसका जप नहीं करना ये बैड लक बताया गया है। और ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे ये बैड लक है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बड़े भगवान के दयालु अवतार हैं। उनको एक अच्छा शब्द दिया गया है, क्या नाम दिया है उनका, औदार्य अवतार कहा गया है। औदार्य का मतलब क्या है, उदार, एकदम लिबरल, मतलब क्या है उसमें कोई कठिनता नहीं है, जो दिखा उस पर कृपा, जो दिशा उसको आशीर्वाद, ऐसा नहीं ये करो वो करो बाद में आशीर्वाद दूंगा, ऐसा नहीं, जो भी आया जो भी इच्छा दिखाया उनको महामंत्र दिया उन पर कृपा कर दिया उन्होंने, तो उनको औदार्य अवतार कहा गया है। प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, पब्लिक लिमिटेड है, लिमिटेड है ही नहीं वो, पब्लिक अमर्याद, सब लोगों के लिए, पात्रे अपात्रे ना देखिला, यानी जो पात्र है कि अपात्र है ना देखते हुए, स्थान अच्छा है कि नहीं, सबको बांटा उन्होंने भगवान का नाम। धर्म का भेद भी नहीं किया, जाति का भेद नहीं किया, कुल का भेद नहीं किया, देश का भेद नहीं किया, सबको दिया उन्होंने। इतनी सारी कहानियां उनकी। तो उनका जन्मदिन था रविवार के दिन, जिस दिन हम रात को हम लोग होली जलाते ना, वो दिन उनको शाम का जन्म होता है, और रात को हम लोग उसी दिन होली मनाते हैं, होली जलाते हैं, अगले दिन रंग खेलते हैं। तो वो दिन था, चंद्र ग्रहण का दिन था, बहुत अपवित्र मानते हैं उसको। उस समय सब लोग अपना चूल्हा बंद, घर बंद, मंदिर बंद, सब करके बैठे थे, और दुनिया सब उसमें गंगा जी में अपना गर्दन तक डूब के बैठे हुए थे। सब लोग हरी 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 जप कर रहे थे। इतने अपवित्र काल में जन्म लिया उन्होंने, ये बताने के लिए कि भगवान के नाम के सामने कोई अपवित्र वस्तु टिकती नहीं है। जितनी भी अपवित्र है वो पवित्र हो जाती है। क्या बताया गया हमने श्लोक में, हम लोग अगर आप देखेंगे, हम यज्ञ करते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतोपि वा। ये जो हम कर रहे हैं, ये कितना भी अपवित्र होगा या पवित्र होगा, सब प्रकार के अवस्था से गुजर गया होगा। यस्मरेत, जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, यस्मरेत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष मतलब जिसकी आंखें कमल जैसी हैं, पुंडरीक अक्ष, जिसकी अक्ष यानी आंखें कमल दल की तरह है, ऐसे भगवान का नाम जैसे लेते हैं, सब बाह्य अभ्यंतर शुचि ही, अंदर से और बाहर से वो व्यक्ति शुचि यानी पवित्र हो जाता है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ऐसे करके हम लोग आचमन करते हैं, मतलब अपवित्र अवस्था कोई बचती नहीं उसमें। अपवित्र को पवित्र करने वाला नाम है ये भगवान का। वो अपवित्र को पवित्र करने वाला नाम चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा से सबको बांट दिया, बिना भेदभाव के, बिना योग्यता के सबको दे दिया। और वही नॉलेज आपको भक्ति विधान में प्राप्त हो रहा है, केवल यहाँ पर नौकरी लेने की वजह से ऑटोमेटिकली ऑन ड्यूटी आपको ये नॉलेज दिया जा रहा है, जिससे आपके केवल नौकरी का काम नहीं हो रहा है, जीवन का भी उद्धार हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, आपको बोलने का मौका मिल रहा है, आपका भी हो रहा है, आपको सुनने का मौका मिल रहा है, और सुनने के बाद में आपको चांस है उसको जीवन में उतारने का। नहीं तो आप बोलेंगे चलो तीन से चार बैठने को बोला था, बैठ गया, भाग में टाइम किसको है, इधर छोड़ के जाना है, ऐसा नहीं, ऐसा सोचेंगे तो उसको भी दुर्भाग्य कहते हैं। दुर्दैवम ईदृशमिहा जनि न अनुराग, इतना सारा करने पर भी लोगों को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भगवान भी और क्या कर सकते हैं, बोलो। थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा ना, फर्जी पेपर तो लिखना पड़ेगा कम से कम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो भगवान ने कहा कि कुछ मत करो, आप भगवान का खाली नाम लो बस, खाली जिधर भी हो उधर रहो, गृहस्थ बन के गृहस्थ रहो, अगर परिवार हो, बीवी हो, किसी की को प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चालू रखो, खाली भगवान का नाम जोड़ दो उसके अंदर, बस जीवन को पवित्र बना दो, शुद्ध बना दो, पाप सब छोड़ दो। जगह में जगह क्या क्या कंडीशन रखा, बोल पहले पाप छोड़ेगा तू, हाँ सब पाप छोड़ दूंगा, आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा, इतना कहने पर भगवान ने कृपा कर दिया उसके ऊपर, इतना ही कहने पर। ऐसा नहीं बोला कि आठ दिन देखता हूँ, तूने वादा किया था ना, देखता हूँ आठ दिन क्या करता है तू, नहीं, पूरा श्रद्धा रखा भगवान के सामने, वादा किया ना, भगवान बोला मैं बिलीव करता हूँ उसके ऊपर, ऑन द स्पॉट उसको भक्ति दिया भगवान ने, ऑन द स्पॉट, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है उसके अंदर, इतनी कृपा किया भगवान ने। तो भगवान का यही कंडीशन है, पाप करना बंद करो बस। और पाप क्या होते हैं, मांसाहार पाप है, व्यभिचार पाप है, नशा करना पाप है, जुआ खेलना पाप है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, विश्वासघात करना पाप है, ये सात महान पाप बताए गए हैं दुनिया में। दूसरे की वस्तु चोरी करना, अपने बिना लेना, किसी का विश्वासघात कर देना, परस्त्री गमन करना, नशा करना, जुआ खेलना, हत्या करके प्राणी का मांस खाना, ये महत पाप बताए गए, उसको छोड़कर आपको भगवान का नाम लेना है बस। तो भगवान का नाम का इतना असर होगा आपकी ज़िंदगी में, आपके चेहरे पर रौनक आएगी, खुशी की रौनक आएगी आपके चेहरे पर, और इतना आनंद आएगा आपको कि आप दूसरे को बताए बिना रह नहीं पाएंगे। उसको जो आपको मिला है आप दूसरे को बताते रहेंगे। समझो अभी आपका पगार बढ़ गया, आप किसी को बोलते हो क्या, खाली अपने पति को बोलेगा बस, बाकी किसको बोलेगा नहीं। समझो आपका लॉटरी लग गया 1 करोड़ का, तो बोले उसको बोलने नहीं, हाँ चोर आएगा फिर चोरी करके जाएगा। तो दुनिया में जब प्राप्ति होती है ना आपकी, तो अधिकतर आप बहुत सोच के लोगों को बताते हो, ज़्यादा बताते नहीं हो कि तुम्हारे शादी में कितना तोले का सोना आया, कोई बताते आप किसी को, चुपचाप रहो, कितना साड़ी खरीदा, जब ससुराल गए तो कितना बैग भर के साड़ी के, 31 लिया कि 51 लिया, खाली फ्रेंड लोग को मालूम है, दुनिया को मालूम नहीं। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि ये चीज़ करके जब आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, ज़िंदगी में रौनक आएगी, आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, आप सबको बताएंगे उसको, इतनी खुशी की बात है। मुझे खुशी मिल रही है, आप भी लो, ऐसे बोलेंगे आप। ऐसा नहीं, मुझे मिल रही है बस, मैं किसी को बोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद के लिए रखूंगा और किसी को बोलूंगा नहीं। ये आमतौर पर लोगों की मनोवृत्ति होती है, लेकिन ये आनंद ऐसा है, इसको प्राप्त करने के बाद में जीव शांत नहीं रह सकता, वो दूसरे को बताएगा उसको, इतना दिव्य आनंद है इसके अंदर। मुझे क्या प्रेरणा है बताओ, मैं जब आया तभी चार लोग यहाँ पर औरतें और चार आदमी बैठे थे, मैं बोला मेरे को बहुत काम है, मैं इधर क्यों आऊँ आठ लोगों के लिए, लेकिन मुझे क्या क्या उत्साह है, क्या कारण है मुझे यहाँ पर बैठ के इतना मैं आपको जोर जोर से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इसका अनुभव किया है लाइफ में, और मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ है मैं खुद जानता हूँ। मैं क्या करना चाहता था जब मैं बचपन में था, और बाद में मैंने क्या किया, और मेरे जीवन में क्या क्या लाभ हुआ, और मैं क्या क्या प्राप्ति किया उसकी वजह से, वो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से नहीं बता रहा हूँ, अपन क्या मानते हो ना, बेम्बी से बोल रहे हैं, कंठ से नहीं बोल रहे। बेम्बी से आदमी कब बोलता है, जब उसको कुछ जोर से बोलना होता है इंपॉर्टेंट बात, तो वो बेम्बी से बोलता है, नाभि से बोलता है वो। तो मैं नाभि से बता रहा हूँ आपको कि इसको ले लो आप, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। ये जो उत्साह भी है ना, ये वो लाभ की वजह से है जो प्राप्त हुआ है, और आपको देने से बताने से मेरा कुछ कम नहीं होने वाला है, क्योंकि धन कैसा है, खर्च न छूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त ही जाए। ये धन ऐसा है, इसको ना कोई चोरी कर सकता है, ये ना घट सकता है, घटने के बाद छोड़ दो, दिन दिन बढ़ते जाता है। आपको 10 रुपए दिए, आपने 5 खर्च किया तो 5 बचा आपका, 5 गया। ये ऐसा नहीं है, जितना दोगे उतना आपका धन बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, जितना आपने दिया उतना आपका भी बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा, ऐसा फॉर्मूला है ये। तो बताने में कोई संकोच नहीं, मेरा कुछ कम नहीं होने वाला है, और बढ़ेगा मेरा, है ना, ऐसा धन है ये। इसलिए आप खुद लो और लोगों को दो। अभी आखिर में आप जाने के पहले आपको बताता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों के लिए क्या आदेश दिया है। हम लोग मतलब कौन, भारत के वासी, हम सब लोग भारतीय हैं, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भारतवासियों के लिए एक स्पेशल डायरेक्ट उपदेश दिया है, आप सुनना चाहेंगे, सब लोग हाथ उठाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। उन्होंने कहा है, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जार, एकदम सिंपल मीनिंग है इसका, जिसका भारत वर्ष में जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में, भारत भूमि ते होइलो मतलब हो गया है मनुष्य जन्म जार, मतलब जिसका मनुष्य जन्म हुआ है उसके लिए क्या आदेश दिया है, जन्म सार्थक कोरी, खुद का जन्म सार्थक करो, भगवान का नाम लो और जन्म सार्थक करो। ये हर एक भारतीय लोग के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया है। अगर आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ है तो आपका जन्म भक्ति में सार्थक करना आपका पहला कर्तव्य है। बाद में बीवी बच्चे परिवार सब नेशन जो भी कुछ है आपका कर्तव्य बाद में, सेकेंडरी दुय्यम, प्राथमिक कर्तव्य आपका है पहले जीवन का उद्धार। और आगे क्या बताया है, पार्ट टू भी है इसके अंदर, पार्ट वन यही खाली पार्ट वन है, जन्म सार्थक कोरी, और पार्ट टू है कोरो परोपकार। परोपकार का मतलब क्या होता है, जो तुमने प्राप्त किया है दूसरों को देना है आपको, तुमने सार्थक किया है दूसरों को सार्थक करने के लिए हेल्प करना है। भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये हमारे देश के हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है। और हमारी आज ये अवस्था है कि हमको पता ही नहीं है कौन किसका कौन है, मालूम नहीं है क्या करना चाहिए, मालूम नहीं है। तो ये मालूम करने के लिए जिंदगी है। कुत्ता बिल्ली के लिए ये अपेक्षा नहीं होती कि वो उनको पता होना चाहिए महाप्रभु चैतन्य कौन है और भागवत में कौन सा श्लोक लिखा है। ये कुत्ते से उम्मीद करते हैं कि हम लोग नहीं करते, लेकिन मनुष्य से करते हैं, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है, ऊपर से मनुष्य, आप भारतीय मनुष्य हो, भारतीय स्त्री हो, भारत में आपका जन्म हुआ है, आप परम भाग्यवान जीव हो। हमारे यहाँ का रिक्शा वाला भी जानता है भगवत गीता में क्या लिखा है, बोलो। ये इस भूमि का महात्म्य है जिसमें हमने जन्म लिया है, इसलिए भारतीय होने का गर्व करो, और भारत में जो सबसे बड़ा धन है उसको पहले अपनाओ। हम लोग डॉलर और पाउंड के पीछे भागते हैं, उनको रुपये में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन भारत में वो धन है जो रुपया, पाउंड और डॉलर इसमें गिन नहीं सकते आप, ऐसा भारत में एक धन है, वो है भक्ति का धन, भगवान के नाम का धन। वो किसी भी दुनिया के और किसी देश में प्राप्त नहीं हुआ है, कोई दुनिया के और देश में संत लोग ने जन्म नहीं लिया है, कोई भगवान का अवतार नहीं हुआ है। हुआ है क्या इंग्लैंड में अवतार भगवान का, बताओ आप, जहाँ सब लोग भागते हैं उधर जाने के लिए, कोई भगवान का अवतार वहाँ पर हुआ है क्या? ये भगवान के अवतार की खान है, इधर अनंत भगवान के अवतार, भगवान के संतों के अवतार यहाँ पर हुए हैं। किसी भी राज्य में जाओ, किसी भाषा में जाओ, हर राज्य में हर भाषा में एक संत हुआ है, एक ने अनेक हुए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा वाले कितने संत हो गए, आप नाम बोलते जाओ, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ बोलते जाओ, जनाबाई, कोरा कुंभार, एक इतनी बड़ी लिस्ट है एक राज्य के अंदर। तो ये भूमि के अंदर आपने जन्म लिया है, बड़े भाग्यवान भाव सब लोग हैं हम लोग, और इसलिए उस भाग्य का लाभ भी लेना हमारा कर्तव्य है। केवल पैसे के लिए काम करना तो दुनिया, कुत्ता बिल्ली भी काम करता है दिन भर अपने बच्चे को पालने के लिए, कोई बड़ा काम नहीं करते हम लोग। उनको छः छः बच्चे एक बार हो जाते हैं, एक बार छः छः बच्चे होते, सोचो आप, आपको अगर छः बच्चे हो गए तो क्या करेंगे आप बताओ, दूध कहाँ पिलाएंगे उनको? एक बार दो आदमी को एक बार पिलाएंगे, बाद में तीन टर्न में छः आदमी को पिलाना पड़ेगा बच्चों को। एक कुत्ती को छः छः पिल्ले होते हैं, वो भी बेचारे दिन भर मेहनत करके खाना खिलाते हैं उनको, भूखे रखते हैं क्या? बच्चे बड़े होकर भौं-भौं करते हैं ना सोसाइटी के अंदर। तो वैसे हमारा मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, केवल धन कमाने के लिए और परिवार को पालने के लिए नहीं दिया है अपना जन्म, ये जन्म भगवान की भक्ति के लिए दिया है। बाकी कर्तव्य करना, ऐसा नहीं कि परिवार कर्तव्य छोड़ के भाग जाना है, आप लोग बच्चों को देखने नहीं, हरी हरी करना है और बच्चों को छोड़ देना हवा पे, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ में भगवान का नाम, भगवान की भक्ति लेना, ये जीवन का कर्तव्य है। ये देने के लिए भगवान स्वयं आते हैं भक्त बनकर, उसका लाभ लेना चाहिए। अपने जीवन का सार्थक करके दुनिया के लोगों का उद्धार करना है, जिनको पता नहीं उनको बताना है, इतनी इतनी खुशी है बताने में। एक ट्रेजर है ये, एक संपत्ति की तिजोरी है, इसकी चाबी किसको मिल गई है वो कितना खुश होगा कि आओ इतने इतना धन है, मैं तो पूरा पेट भर गया मेरा, लेकिन वाकई भी इतना बहुत धन है, आप सबका पेट भर जाएगा इसका, लाओ सब लोग आओ ले लो उसको, लूट लो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा परम धन हमारे जीवन में अवेलेबल है और चैतन्य महाप्रभु के जन्म के वजह से ये प्राप्त हो गया है। उन्होंने और एक अमंग हमारे लिए वरदान दिया है, उन्होंने कहा है मेरे जन्म से 10,000 साल तक जो भी व्यक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करेगा वो उसी जन्म के अंत में भगवत धाम पहुंच जाएगा। और अभी केवल 525 साल हो गए हैं, 9,445 साल बाकी है, और हम लोग अभी उस स्वर्ण युग में हैं, जो 10,000 साल का काल है ना उसको स्वर्ण युग कहते हैं, कलयुग का गोल्डन पीरियड। महाप्रभु के जन्म के बाद 1486 में उनका जन्म हुआ था, आज कितने साल हो गए? 530 साल पूरे हो गए, 531 साल पूरे हो गए। 10,000 साल तक जितने जन्म लोग लेंगे मनुष्य के रूप में, और उस जन्म में अगर हरिनाम का स्वीकार करेंगे तो सब लोग उसी जन्म के अंदर भगवत धाम जाएंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा। और क्या चाहिए हमको बोलो, और क्या चाहिए जीव को, और क्या चाहिए? खाली हरे कृष्ण महामंत्र लेना है बस। वो पसंद नहीं है तो राम का नाम ले सकते, वो पसंद नहीं है तो विष्णु का नाम ले सकते, भगवान का नाम लो। ऐसा नहीं कि हमारे भक्ति विधान में ये है तो यही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लो, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, राम कृष्ण हरि बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लो जरूर। वो जो भी लेगा वो उन्होंने वरदान दिया है, उसको मैं उसी जन्म में पार कर दूंगा, दोबारा आने की जरूरत नहीं यहाँ पर कष्ट भोगने के लिए। इतना भाग्य कलयुग में, इसलिए कलयुग में इतने सारे दोष, इतना प्रॉब्लम होने पर भी संत लोग कलयुग की पूजा करते हैं, इतना दोष का सागर होने पर भी कलयुग का संत लोग पूजा करते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा गुण है इसके अंदर, वो एक गुण की वजह से जितने भी लोग कलयुग में आने वाले हैं सब भगवत धाम में जाने वाले हैं। अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत, एक कीर्तन का और भगवान के नाम का सहारा लेकर सब लोग मुक्त संग परम रजेत, भगवत धाम में उनकी गति हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।